ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना के तीसरे चरण के अंतर्गत 13 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2024-25 की मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वृद्धा पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की और सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए कक्षाओं पर प्रतिबंधों में छूट देने पर विचार करने के लिए CQM को निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के भावी विकास में सहकारी समितियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सहकारिता केवल एक मॉडल नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की नींव है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सहकारी समितियां एक विचार से एक आंदोलन में बदल गई हैं, जिसने एक क्रांति का रूप ले लिया है और इस क्रांति से देश का सशक्तिकरण हुआ है।
भारत आज सबसे तेजी से विकसित होने वाली इकोनॉमी है। हमारा मकसद हाई GDP ग्रोथ के साथ साथ इसका लाभ गरीब से गरीब तक पहुंचाने का भी है। दुनिया के लिए जरूरी है कि ग्रोथ को ह्यूमन सेंट्रिक नजरिए से देखें। भारत का ये लक्ष्य रहा है कि देश में हो या फिर ग्लोबली, हमारे हर काम में ह्यूमन सेंट्रिक भाव ही प्रबल हो।
श्री मोदी ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोबगे, फिजी के उप प्रधानमंत्री मनुआ कामिका और गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 वर्ष के इतिहास में भारत में पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा का आयोजन किया जा रहा है। 1895 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन दुनिया भर के 30 लाख सहकारिता उद्यम संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। इस गठबंधन के 1 अरब से अधिक सहकारी सदस्य हैं। भारत मंडपम में 6 दिवसीय सम्मेलन में अनेक कार्यक्रम और विचार गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। इस आयोजन में देश विदेश के 3000 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है रखा गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में नई चेतना के तीसरे चरण के अंतर्गत 14 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने सभी से देश में लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए अपनी आवाज उठाने का आग्रह किया।
महिला सशक्तिकरण हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी का मिशन है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण का काम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन गांव-गांव में हिंसा के खिलाफ, लैंगिक हिंसा के खिलाफ चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। आज उस अभियान नई चेतना का प्रारंभ हुआ है। 1 महीना यह अभियान चले।
महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मिशन का उद्देश्य सभी के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य देश के सभी लिंगों के बीच हिंसा के डर को समाप्त करना है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2024-25 की मतगणना आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI की रौनक खत्री ने 20,207 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। श्री सिंह के अनुसार उपाध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के भानु प्रताप सिंह ने 24,166 मतों से विजय हासिल की। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार NSUI के लोकेश चौधरी ने 21,975 मत प्राप्त कर संयुक्त सचिव के पद पर जीत दर्ज की। ABVP की मित्र विंदा कर्णवाल ने 16,703 मतों के साथ सचिव पद पर जीत हासिल की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान देश भर में कल से लेकर 26 नवंबर 2025 तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा कि संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में संसद की दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। श्री रिजिजू ने कहा कि ये केवल संसद का नहीं बल्कि पूरे देश का उत्सव है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एक वर्ष व्यापी इस लंबे समारोह का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के जरिए लोगों को जोड़ना और संविधान तथा इसके निर्माताओं को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर संवादात्मक गतिविधियों और संसाधनों के जरिए संविधान की विरासत के साथ नागरिकों को जोड़ने के लिए एक समर्पित वेबसाइट constitution75.com बनाई गई है। राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे व्यापार मेले में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। मेले में देश विदेश के प्रदर्शकों के स्टॉलों पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
इस साल मेले में दुनिया भर से 3000 से अधिक प्रदर्शक, 49 केंद्रीय मंत्रालयों, 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण निजी कंपनियां भाग ले रही हैं। मेले में आज बड़ी संख्या में आगंतुक रसोई के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, तुर्की लालटेन, सूखे मेवे, बैग, पर्स, जूते, अचार, मसाले, तेल, पंखे, एयर प्यूरिफायर, कपड़े और सजावट की चीजें खरीदने के लिए एकत्रित हुए। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बिहार के दीपेंद्र ने मेले में विभिन्न संस्कृतियों को देखने पर खुशी व्यक्त की।
आके इतना नया नया चीज देखने को मिलता है। एक तो हमारा जो लोकल ट्रेडिशन है या हमारी जो कल्चर है, हमारी जो पुरानी सभ्यता की चीजें हैं, हम उससे रूबरू होते हैं।
इस वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय विकसित भारत 2047 है, जो देश की स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकास के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए कक्षाओं के संचालन पर प्रतिबंधों में छूट पर विचार करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया है। वायु गुणवत्ता अति गंभीर श्रेणी में होने के कारण पिछले सप्ताह इस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि अधिकतर विद्यार्थियों के घर पर एयर प्यूरिफायर की सुविधा नहीं है, इसलिए ऐसे बच्चों के घर पर रहने और स्कूल आने में कोई विशेष फर्क नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि कुछ विद्यार्थी मध्याह्न भोजन प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अदालत ने इस मामले में आयोग को कल तक एक निर्णय लेने का आदेश दिया है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने अति गंभीर श्रेणी के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप 4 के उपायों के हिस्से के रूप में आयोग द्वारा दिल्ली में ट्रकों और हल्के व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू करने में विफल रहने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने इस निर्देश को लागू करने में असफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कनकलता, प्रादेशिक समाचार।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज शाम खराब श्रेणी में दर्ज की गई। शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 7 बजे 377 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर 400 से अधिक हो गया। दिल्ली के शादीपुर स्टेशन पर 414, आनंद विहार में 420, वजीरपुर में 418, सोनिया विहार में 410, बवाना में 422 और पंजाबी बाग में ये 403 दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज वृद्धा पेंशन शुरू करने की घोषणा की। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बुजुर्ग नागरिकों के लिए 80,000 वृद्धा पेंशन शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे अब 5.5 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। श्री केजरीवाल ने बताया कि आवेदन के लिए पोर्टल शुरू हो चुका है और 24 घंटे में ही 10,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद थीं।
दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही है। 32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी, इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। तो आज सभी बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। न केवल कैबिनेट ने पास कर दिया पर दिल्ली सरकार ने लागू भी कर दिया है और कल से पोर्टल चालू भी हो गया है और पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में 80,000 नई वृद्धा पेंशन दिए जाने की घोषणा भाजपा के संघर्ष और राजनीतिक दबाव का परिणाम है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर कोई भी वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासी 10 वर्ष से आम आदमी पार्टी के कुशासन का सामना कर रहे हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार देश में और अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जियो टैग देने पर विचार कर रही है। आज नई दिल्ली में विरासत के विकास तक विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने देश में ऐसे उत्पादों को खोजने की आवश्यकता बताई जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया जा सका है। उन्होंने कहा कि जीआई टैग वाले उत्पादों को बुनकरों की आय बढ़ाने के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री सिंह ने यह भी कहा कि सरकार गांवों से वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से और अधिक जीआई टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है।
ये देश के लिए सौभाग्य है, पूरी दुनिया में हम जीआई टैगिंग में अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं और उसका पेटेंट भी हम ले रहे हैं।
समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रसार भारती, रेलटेल और प्लेबॉक्स टीवी ने आपसी सहयोग के माध्यम से रेल वायर ब्रॉडबैंड पर स्वतंत्रता योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने आज नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की। श्री द्विवेदी ने कहा कि वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रसार भारती के लिए एक बड़ी छलांग है। देश इसके माध्यम से विशाल और विभिन्न दर्शकों से पहले की तरह जुड़ जाएगा। उन्होंने बल दिया कि इस सहयोग का उद्देश्य पारंपरिक और आधुनिक प्रसारण के बीच दूरी कम करना है। श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करके प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल स्थापित किया है। रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने कहा कि रेलटेल की होम इंटरनेट सेवा देश के इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों में किफायती इंटरनेट पहुंचाने पर केंद्रित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर विश्वेश्वरन तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य विक्रय विपणन अधिकारी गुरशरण राय बंसल इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के महत्व, पात्रता और अन्य तकनीकी पहलुओं के संबंध में हमारे विशेषज्ञों से रात 9:30 बजे के बाद टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से 9289-094-044 और अपने प्रश्न #AskAIR के साथ एक्स पर अपने पोस्ट कर किया जा सकते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 103वीं जयंती के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग ने कहा कि इस कार्यक्रम में भारत की अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा में डेयरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में आज सवेरे घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में आम तौर पर मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि सवेरे के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना के तीसरे चरण के अंतर्गत 13 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2024-25 की मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वृद्धा पेंशन शुरू करने की घोषणा की और सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए कक्षाओं पर प्रतिबंधों में छूट देने पर विचार करने के लिए CQM को निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।